करती हैं, निज पर के हित साधन में जो इस दिन तत्पर रहते हैं, साथ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के सुख समूह को करते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चरिया में यह चित सदा अनुरक्त रहे।
अब मैं परम पूज्य एक द्वार क्षमा सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु के साथ सर्वत प्रार्थना करता हूँ। सावक चरण पर अपने मंगल में स्थान करके आज का दिन प्रवचनों से हम सबको कृतार्थ करें। परम पूज्य एक द्वार क्षमा सागर
नमोस्तु पूर्वानेक्षी साध्या विलयम श्री शुद्ध भक्ति गायुस्व गुम करो पराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितम्। अज्ञान तिम्रांधानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार नामधेयम्। अस्मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनोनुसार मासाद्य श्रीमत् समंत भद्राचारी देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यसीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासि अर्थं गणहरदेवैः गन्त्यं सम्मम् प्रणमामि भक्तिजुत्तो सुदना नमको वयम् शिरसा। इच्छामि भन्ते सुध भक्ति काउ सको को दुसालोचिम अंगो भंग पहिने पाऊ ने परियम्मि सुत पणिमाणि गुब गए चूलिया जय सुत तय तुविदम कायम सैन चुकाल मुंचिमि पूजे मि वंदामि नमन सामी। दुखो को कम को वोलाओ सुगम नम समाई मुंडम जिन मुन संपत्ति को मुचम। नमोस्तु पूर्वानेक श्री स्वाध्याय वेलायम श्री आचार्य भक्ति काय सुगम करो। श्रुतिजलदीपारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतीभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसम्मज्ञे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायैर्य सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमे नया तरन्ति संसारसायरं घोरम्। शिन्नन्ति अक्षकम्मं जन्नं मरणं न पाविन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा। शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीनन्तु मां साधुवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकाः चारितारणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयरिवक्ति काहु सगो को तसालोचिम समनान समुदंसन समचरिजुतानम पंच विहाचारणम आयरियानम आयराधिसुदनान उपदेश्यानम मध्यायानम तीरण गुणपालन रयानम सब साहूनम सयानिच कालमंचिमि पूजिमि वंदामि नमंसामि दुखो को कुमको वैलाव सुगैगुणम समायुणम जिनगुण संपत्ति भूचम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरण शाभकाचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। हम अपने जीवन में धर्म लाना चाहते हैं, या ऐसी भाषा कहें कि हम अपने जीवन में धर्म प्रकट करना चाहते हैं। तब कोई भी चीज प्रकट करनी हो तो इसके मायने हैं कि वो पहले से हमारे पास है, कुछ उस पर आवरण आ गया है जिसकी वजह से वो प्रकट नहीं होती है। तो हां, शायद यही बात है, हमारे भीतर धर्म प्रकट क्यों नहीं हो पाता, हमारी अपनी अज्ञान की वजह से, हमारे अपने विकारी भावों की वजह से, राग द्वेष की वजह से। तो हमने शुरुआत में ही ये तय कर लिया था कि हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो सिर्फ अपने अज्ञान को हटाने के लिए कर रहे हैं, और बड़े से बड़ा अज्ञान है कि शरीर को और आत्मा को एक ही मान लेना, इससे बड़ा कोई अज्ञान दुनिया में नहीं है। भले ही वो अंगूठा लगाने वाला क्यों ना हो, यदि उसको इस बात का एहसास है कि शरीर जुदा है और ये आत्मा जुदा है, तब मानिएगा वो आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में ज्ञानी माना जाएगा, भले ही वो निरक्षर भी क्यों ना हो। पशुओं को किसी विद्यालय में कभी आपने आ अनार का ऐसा पढ़ते सीख देखा, कभी नहीं देखा होगा। उनको तो वर्णमाला भी नहीं आती, अल्फाबेट्स भी नहीं आते उनको, लेकिन उनको भी सम्यक दर्शन हो सकता है, होता ही है। नरक में भी सम्यक दर्शन होता है, सच्ची श्रद्धा वहां भी हो जाती है। तो आखिर बात क्या है, उनको ज्ञान कैसे मिल गया? तो कहते हैं अक्षर ज्ञान नहीं है, हमारे यहां तो भाव शुद्ध की बात है, हमारे अंतरंग में ऐसी बात आ जानी चाहिए। माध्यम कोई भी हो सकता है, अक्षर के माध्यम से आती है या सुन करके आती है या कि सिर्फ देख करके आती है। तो ऐसे कई कारण मिल जाते हैं, जाति स्मरण भी है, जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन भी है, जिससे कि हमारे भीतर हमारा ज्ञान हटता है और बोध हमें जागृत हो जाता है। हमारी पहली कोशिश यही है कि हमारा ज्ञान, जो बड़े से बड़ा ज्ञान है, वो हटे। हमारे भीतर जो राग द्वेष विकारी भाव, जिनको कि हमने अपना मान लिया है कि क्या करें, गुस्सा करे बिना चलता नहीं है, कषाय करे बिना चलता नहीं है, ये राग द्वेष तो जो है वो अब होंगे ही, हम इनको हटा नहीं सकते, ये तो हमारी नियति है। हमारी नियति नहीं है, हमें जैसे ज्ञान होगा हम अपने आप समझने लगेंगे कि ये विकारी भाव है, मेरे अपने आत्मा के स्वभाव नहीं है, और जो चीज मेरा स्वभाव नहीं है उसको मैं व्यर्थ करने की कोशिश क्यों करता हूं। ये बात अपने आप समझ में आने लगती है। तो हमने ये भी तय किया था कि हम अपने राग द्वेष को कम करेंगे, जो जो राग द्वेष के कारण है उनको भी कम करना पड़ेगा। देखो, जब भी राग द्वेष कम होगा, किन्हीं निमित्तों से ही होता है। अभी हमारा उपादान इतना सशक्त नहीं है कि हम पर निमित्त का असर ना पड़े, हमारे उपादान में इतनी अभी मजबूती नहीं आई है कि वो जैसे भगवान की मूर्ति देखता है ऐसे ही संसार की किसी भी चीज को देख करके निरीह व्यक्ति से और वैसा ही विचार करने लगे। यहां तो हम वीतराग में से राग निकाल लेते हैं, फिर राग में से वीतराग निकालना तो बहुत कठिन बात है, तो हमारी इतनी योग्यता नहीं है। तो हम अधिक से अधिक
कोशिश करते हैं कि ऐसे निमित्तों से भी दूर रहें जिनसे कि हमारे मन में राग द्वेष होता है। और राग में भी भैया राग तो फिर भी दो प्रकार का हो सकता है, लेकिन द्वेष तो एक ही प्रकार का है। राग तो प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार का है, लेकिन दो द्वेष तो अप्रशस्त ही है। तो सबसे पहले तो कहते कि द्वेष से बचें, जैसे ज्ञान होता है राग द्वेष की कमी होती है। कहते परस्पर प्रीति जायते, जो साधर्मी हैं और थोड़े बाहर निकलें तो जो प्राणी मात्र है उनके प्रति प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए, उनके प्रति दया का, करुणा का, मैत्री का भाव आना चाहिए। ये मेरे ज्ञान की कसौटी है, ये मेरे ज्ञान की परख है। मैं अपने ज्ञान को रोज परखूं कि मैंने इतना जाना, इन तीन चीजों मुझे इसका फल मिला कि नहीं मिला। हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, हमारा एम क्या था इस सबको पढ़ने का, ये अपन शुरुआत से हमने ये सीखा है और तय भी किया है। और फिर जब हमने अपने उत्थान की बात शुरू करी थी तो इस धर्म के द्वारा ही हमारा उत्थान होगा, और अपने उत्थान पतन के लिए चूंकि हम ही जिम्मेदार हैं इसलिए क्यों ना हम ही शुरुआत करें। कोई और आकर के हमें मोक्ष में थोड़ी भेज देगा। हमें जैसा हमने अपना संसार बसाया है ऐसे ही हमें एक दिन इस संसार से पार होना पड़ेगा। पर सबसे कठिन बात यही होती है कि जो अपन अपने हाथ से बांध लेते हैं उसको तोड़ना बहुत कठिन है, बच्चा होना पड़ता है। जैसे बच्चों को कभी देखिएगा, रेती का ठेला आकर के यहाँ पर रेती डाल देता है, वो उसमें अपने पैर लगा करके एक ठो बढ़िया सा थोप थाप के घर बना लेते हैं। घर बना लेते हैं, उसमें चिमनी लगाएंगे साहब, कहीं से लकड़ी वकड़ी ले आएंगे, उसमें चिमनी भी उनकी है, सब कुछ है, खिड़की है, दरवाजे, इतना आलीशान। उनकी दृष्टि में अगर उनकी आंख से देखो अगर तो वो एकदम आलीशान, आपके मकान मकान से भी आलीशान, इतना बढ़िया बना है। और अगर उधर से माँ ने आवाज दी, क्या करते हो, चलो जल्दी, बढ़िया सी चीज आई खाने पीने की, तो एक बार ऐसे गौर से देखते हैं अपना बनाया हुआ और एक लात मार के मिटा करके अपने चले जाते। हमने बनाया था, मिटा भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन अपने को जो कुछ बनाया है उसमें जरा धक्का लग गया तो ऐसा लगता है जैसे यहां धक्का लग गया, वहां बाद में लगता है, यहां पहले लग गया, इतना अपना एकत्र हो गया है। यही अज्ञानता है। तो हम ये भी समझेंगे कि जो जो चीजें हमारे राग द्वेष में निमित्त बनती हैं, कैसे हमने इस मोक्ष मार्ग पर अपने उत्थान के लिए किस तरह की हम प्रक्रिया करेंगे, हमें बहुत बच्चों जैसा इनोसेंट हो जाना पड़ेगा कि जो बंधन हमने बांधे हैं उनको हम ही तोड़ेंगे। एक बहुत बड़ा साकल बनाने वाला था, आपने शायद ये घटना कहीं सुनी होगी, बहुत बड़ी मार्मिक स्थिति बनती है। हम सबके साथ भी यही है, अपने बनाए हुए बंधन तोड़ने के लिए हमें कोई और चाहिए, जबकि क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर। जब भी कोई चीज उत्पन्न होगी वो बनाने वाले से बड़ी नहीं हो सकती, बनाने वाले हम खुद हैं, अपना संसार हमसे बड़ा संसार तो नहीं हो सकता। लेकिन हमें तो यही लगता कई बार कि शायद हम छोटे पड़ गए हैं, हमारा बनाया संसार ही बड़ा है और वो ही अच्छा है। तो वो साकल बनाने वाला था, जंजीर बनाता था और उसकी जंजीर पर वो एक ठो अपना निशान लगा देता था कि ये फलाने की बनाई जंजीर है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अब क्या हुआ कि एक बार वो किसी केस में फंस गया और उसको भी जो है जंजीर से बांध करके और ले जाया गया, तो वो बड़ा खुश था। जब जंजीर से बंधा हुआ और खुश खुश चला जा रहा रास्ते से, तो एक फकीर जैसा व्यक्ति था, उसने देखा कि मामला कुछ गड़बड़ है, ये इसको हथकड़ी भी लगी फिर भी ये खुश है, बात कुछ ना कुछ इससे सीखना चाहिए। और चले गया पीछे पीछे, उसको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद किया, वो सींचादार वो दरवाजा जब बंद हुआ और इसने देखा और जंजीर देख करके और इसने रोना शुरू कर दिया, तो वो जो फकीर इसके साथ आया था उसने कहा बड़ा अजीब आदमी है, अभी जब तक जंजीर बंदी रास्ते से चला रहा था खुश था और अब अपने हाथ से जंजीर देख करके और अब खुद दुखी हो रहा है। इसे पूछना चाहिए कि बात क्या है तुम्हारे खुश होने का और अचानक दुखी होने का कारण क्या। उसने कहा भैया मुझे बताओ, समझ में नहीं आया कि तो अभी खुश थे और अब दुखी हो रहे हैं। बोले हाँ, मैं खुश इसलिए था कि आज तक कोई भी जंजीर ऐसी नहीं बनी जो मैं न तोड़ सकूं। मुझे इस बात का एहसास था कि कोई भी दुनिया की कोई भी जंजीर हो मैं उसको झटके एक झटके में, क्योंकि मैं खुद जंजीर बनाता हूं और उसका जानता हूं कि कहां कमजोर होती है बनाने वाले की जंजीर, मैं जानता हूं उसे आसानी से तोड़ सकता हूं, इसलिए मैं खुश था कि जैसे ही मुझे कर दो जेल में बंद मैं तो तोड़ के बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जब मैंने देखा यहां आकर के कि ये तो मेरी बनाई जंजीर है, तो मेरी जो बनाई जंजीर की तो गारंटी है किसी से नहीं टूट सकती। देखिएगा ये भ्रम देखिएगा, और इसलिए मुझे अब रोना आ रहा है कि ये बनाई मेरी जंजीर है और मेरी जंजीर की ये के साथ ये तय है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता, वो उस क्षण ये भूल गया कि मेरी जो है बनाई जंजीर के फॉल्ट्स तो मैं जानता हूं, मैं उसे तोड़ सकता हूं, कोई और ना तोड़ सके लेकिन मैं तो खुद तोड़ सकता हूं। यही भ्रम तो है हमारे साथ भी कि हम अपने बनाए हुए बंधन में ही इतने अधिक जकड़ जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम तो नहीं तोड़ पाएंगे, पर ये ज्ञान हमें इस चीज में सहयोगी बनता है कि अगर हमने अपने कर्म बांधे हैं तो उन कर्मों को तोड़ने का भी हमारे पास हथियार है, उन कर्मों से भी जूझने का हमारे पास कोई रसायन है, कीमिया है, कोई प्रोसीजर है। वही प्रोसीजर हम यहाँ समझ रहे हैं, वो सारी चीजें कैसे कैसे खत्म होती हैं, हमारे बंधन अपने हाथ से हम कैसे तोड़ेंगे, श्रद्धा से तोड़ेंगे। सबसे शुरुआत में जो भी भ्रम पैदा होते हैं, जो भी संदेह पैदा होते हैं, वो श्रद्धा के अभाव में पैदा होते हैं। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कि जिन्होंने अपने ये भ्रम तोड़ दिए हैं, जिन्होंने इस संसार के बंधन को तोड़ दिया है और हमें भी उपदेश दिया है, हम सबसे पहले उनके चरणों में माथा टेकेंगे, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं। रास्ते पर एक अकेले चलना बहुत आसान है, मैं हमेशा कहा करता हूं एक अकेले, क्योंकि मनमानी करने की पूरी गुंजाइश है, कोई भी चल सकता है एक अकेले, लेकिन किसी के साथ चलना बहुत कठिन है। किसी के साथ चलना क्योंकि उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी साथ में है, ये फिर भी आसान है। लेकिन तीसरा रास्ता और कठिन है, रास्ते पर किसी के पीछे पीछे सिर झुकाए चुपचाप चलना और कठिन है। इसमें अहंकार को कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहां तो चुपचाप जो है सिर झुकाए चलना, और सबसे कठिन यही पड़ता है सिर झुकाए चलना। और हमारे यहां तो धर्म की शुरुआत ही यहां से होती है कि अगर माथा कहीं झुका नहीं है, जहां सच्ची बात है वहां नहीं झुका है, तो मानिएगा आप कितना भी चलते रहिएगा पहुंचिएगा कहीं भी नहीं, नहीं पहुंच सकते। जो पहुंचे हैं जब तक उनके कदमों में हम नहीं बैठेंगे तब तक अपने अपनी शुरुआत ही नहीं होगी, फिर पहुंचने की तो बात ही छोड़िएगा। तो हमने ये तय कर लिया था, अपने मन से ही तय कर लिया था, किसी के कहने से तो नहीं, अपने मन से ही सोच लिया था, सुन सुन करके सोच लिया था कि ठीक है अगर ऐसा ही है तो मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में अपना माथा झुकाता हूं। और जैसे ही हम माथा झुकाते हैं एक हमारे भीतर रिसेप्टिविटी डेवलप होती है, और हम इतने रिसेप्टिव होते हैं कि जो हमारे भीतर चीजें हैं वे सब धीरे धीरे बाहर आना शुरू होती। अज्ञे ने तो एक जगह लिखा कि सबके भीतर सोता है एक झरना, इस इंतजार में कि कोई आए और ऊपर की परतें हटाए और एक धार नई बहाए। तीर्थंकर और जो उपदेश देने वाले महान आचार्य, वे हम पर करुणा करके क्या करते हैं, हमें एहसास करा देते हैं अपने भूले हुए आत्मस्वरूप का, और हम एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, ऊपर की परतें हटाना शुरू कर देते हैं। यही तो हम कर रहे हैं, श्रद्धा हमारी परतों को हटाती है, क्योंकि वे परतें हमें कठोर बना दे रही थीं, हमारा स्वभाव नहीं था, लेकिन हम जैसे ही श्रद्धा से झुकते हैं हमारे भीतर कितनी बातें आना शुरू होती, हम निशंकित हो जाते हैं, हमें फिर दुनिया की कोई आकांक्षा नहीं घेर पाती, हमें विचलित नहीं कर पाती। हम अगर कोई सच्चा मोक्ष मार्ग पर चलने वाला है उसके प्रति घृणा नहीं कर पाते हैं, क्या करें, सिर्फ प्रेम ही कर पाते हैं, घृणा हो ही नहीं पाती है, ऐसी दृष्टि हो जाती, इतनी दृष्टि की निर्मलता हो जाती। और अगर समझना कि कहीं कोई जुगुप्सा बैठी हुई है, कहीं कोई घृणा बैठी है, सच्चे रास्ते पर चलने वाले के प्रति भी अगर बैठी है, तो समझना कि अभी हमारी दृष्टि में उतनी निर्मलता नहीं आई है। और फिर हमें कोई अपनी उस रास्ते से विचलित नहीं कर सकता, गलत रास्ते पर जाने वाले की फिर हमारे मुंह से प्रशंसा नहीं होती, हम निंदा भी नहीं करते तो प्रशंसा भी नहीं करते। अमूढ़ दृष्टि, जितने भी अविवेक हैं, जितनी भी मूढ़ताएं हैं, उन सब से हम रहित हो जाते हैं। हम कोई अगर सच्चे रास्ते पर चल रहा है तो उसके दोष नहीं देखते हैं, अगर वो विचलित होने लगता है तो उसे पुनः स्थित करते हैं, गले से लगाते हैं, अपना निस्वार्थ प्रेम उसको देते हैं, सेवा उसकी करते हैं कि भैया तुम तो अच्छे श्रद्धालु हो, हम क्या सेवा कर सकते हैं, तुम तो बड़े चारित्रवान हो, हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं। इस तरह हम उसकी सेवा करके अपना ही धर्म पुष्ट करते हैं, धर्मात्मा की सेवा करके हम अंततः अपने ही धर्म की सेवा करते हैं, जो हमारा अपना आत्मधर्म है उसकी सेवा करते हैं। और आखिरी में जैसे ही हम इस तरह का व्यवहार करते हैं, मैं कल पढ़ रहा था कि अगर हमारा सबके प्रति वात्सल्य हो तो इससे बड़ी प्रभावना क्या हो सकती है। आदमी सोचता है कि अरे देखो इनका कितना स्नेह है, हम इनके पड़ोसी हैं फिर भी इनका व्यवहार हमारे प्रति कितना अच्छा है। ये जैनी लोग बड़े अच्छे होते हैं, अहिंसक होते हैं, कभी किसी का उपद्रव नहीं करते हैं, इनसे बड़ी निश्चिंतता मिलती है। ये धर्म के प्रति उनका कितना बढ़िया एटीट्यूड है, और अगर हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार ना करें, अरे इनके धर्म में जरूर बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं नहीं, हमने बहुत देखा। प्रभावना कहां हुई? प्रभावना जब हमारे जीवन में प्रकट होगा, मैंने पिछले बार भी कहा था, ऐसा हमने अपने जीवन में ये सारे गुण, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपके भीतर इतने दिनों में ये सारी चीजें, मैं कहता हूं 0.0001% भी आई होंगी, अगर आई हैं तो मैं सेटिस्फाई हूं। हम कल फिर बैठेंगे और फिर आगे अपनी जीवन की यात्रा शुरू करेंगे, पर हमें रोज रोज ये देखना है कि हम कितने आगे बढ़े, या जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, पीछे तो नहीं हट गए, इतना भी बहुत है। हम जहां खड़े वहीं खड़े रह जाए तब भी ठीक है, ना बढ़ पाए आगे, पर अब पीछे ना हटे तभी हमारी यात्रा पूरी हो पाएगी, ऐसा विचार करके और हम आगे शुरू करते हैं। इन आठों अंगों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, कल अपन ने ये शायद बात समझ ली है। इतना बड़ा अंजन चोर जिसको किसी विश्वास नहीं, उसने विश्वास कर लिया था नमोकार मंत्र पर, और उसका उच्चारण करके और एक बार में ही 108 सीखचे तोड़ करके, और विद्या विद्या जो छोटी मोटी चीजें वो तो ऐसे सिद्ध हो ही जाती हैं। सवाल वहां विद्या सिद्ध होने का नहीं, सवाल वहां पर उसकी श्रद्धा का है, उसकी निशंक होने का है। हमको तो मन में आ जाता है कि हाँ रोज तो पढ़ते नमोकार, कचू तो नहीं हूं, हम अपनों काम तो नहीं बनो नमोकार पढ़े से, ऐसा होने लगता है। फिर जब हमारा संसार का काम नहीं बनेगा तो इस नमोकार मंत्र से मोक्ष का मार्ग कैसे खुलेगा, ऐसा मन में आने लगता। जबकि कभी पढ़िएगा, धवला में लिखा है कि जो व्यक्ति आते जाते खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर स्थिति में पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करता है, वो निरंतर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहा है, दिखती नहीं है, होती रहती निरंतर। लेकिन हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है, हमें अपनी श्रद्धा को इस पर पूरा मजबूत रखना चाहिए कि नहीं, ये नमोकार जो भगवान ने पंच परमेष्ठी के स्मरण का कहा है वो सच्चा है। ऐसा निशंकित में अपन ने अंजन चोर को पढ़ा था, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अनंतमती, जिनको कि सर्प ने ग्रस लिया था, इसके बाद भी उनका चूंकि व्रत था तो पिता के आने पर भी उनने जाने से इनकार कर दिया था कि अब तो मरण निश्चित ही है, इसको भी मत मारिएगा, मुझे संसार की किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। ऐसा क्या अपन कभी कर पाएंगे? ऐसी आकांक्षा हमारी ही क्षीण हो पाएगी, हमें रोज प्रयास करना चाहिए। फिर उदयन राजा प्रभावती और दोनों ने मुनि महाराज को पड़गा लिया था, वो तो परीक्षा कर रहे थे तो पूरा जो भोजन दिया उसका पूरा बमन कर दिया, बमन हुआ तो कुछ नहीं, अरे हमने कैसा भोजन दे दिया कि महाराज को तकलीफ हो गई, अपने हाथ से उठा करके सारा बमन और बाहर फेंक दिया। निर्विचिकित्सांग मुनि तन मल मन देख घिनावे, जरा भी उनको घृणा नहीं है, उनके मन में जरा भी विकार नहीं आया कि अरे कैसा है ये मोक्ष मार्ग, कैसा है, नहीं ये मोक्ष मार्ग सच्चा है, मेरी गलती हो गई कि मैंने इनको इनकी प्रकृति के विरुद्ध आहार दे दिया जिससे इनको वमन हो गया। रेवती रानी का मालूम है कि कितने सारे उसने इंद्रजाल फैलाए थे, और आखिरी में तो ऐसा तक कर दिया कि जैसे मानो तीर्थंकर का समोषण आ गया, लोगों ने कहा अब तो चलो तीर्थंकर का समोषण आ गया, उसने कहा आ ही नहीं सकता, 24 का आना था आ चुका, ये हो नहीं सकता, अब कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता यहां पर, इतनी जो है अमूल दृष्टि, इतनी दृष्टि में विवेकपूर्ण दृष्टि है। हम तो थोड़ी सी बात सुनकर के ही संदेह में पड़ जाते हैं, जरा जरा से में हम अपने मार्ग को बदलने के लिए तैयार हो जाते, नहीं बदलते ये बात जुदी है, पर मन में तो एकदम आ ही जाता, दूसरे मार्ग की प्रशंसा आ जाती कि ठीक है अपने तो भी ठीक है, लेकिन देखो उनके यहां पर कितना बढ़िया चलता है, ये भी उनके यहां बहुत अच्छा है, किसी की अच्छाइयां देख करके उनकी प्रशंसा करना अच्छा है, लेकिन अपने मार्ग से विचलित करने के लिए अगर वो कारण बनती है तो हमें तटस्थ रहना भी सीखना चाहिए, वरना धीरे धीरे, आज तो आप थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं, कल के दिन अपना सब कुछ छोड़ करके, और ऐसा ना हो कि उसी गलत रास्ते पर चले जाएं। बहुत मुश्किल से सच्चा रास्ता मिलता है और फिर उस पर चलना तो और ही कठिन है। ये तीसरी कहानी भी अपन पढ़ चुके हैं, जिनेंद्र भक्त की और वारी शेन की, सब कहानियां मेरे ख्याल से आपको मालूम है। कहानियां हमारे जीवन में हमें कोई उपदेश दे करके जाएं, अब तो वे सब है नहीं, लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसी कहानियां घटित होती होंगी रोज कि जब हमें ऐसा मौका आता होगा, किसी के विष्णु कुमार मुनि महाराज जैसा मौका कभी आया आपके जीवन में कि दूसरे की मदद करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, दूसरा साधर्म ही उसकी मदद करने, उसकी रक्षा के लिए इतने सारे मुनि महाराज वो उपसर्ग आए उनकी रक्षा के लिए। अभी तो हम शायद उपसर्ग करने तैयार हो जाते हैं, उपसर्ग टालने तैयार नहीं होते हैं। कैसी हमारी श्रद्धा, अपनी श्रद्धा को परखिएगा, कसौटी पर परखिएगा, और वज्रनामा जो प्रभावनांग में कि कैसे उन्होंने अपने ज्ञान का और अपनी श्रद्धा का उस रानी ने किस तरह से भगवान की प्रभावना के लिए उपयोग किया, आप पढ़िएगा इन सब चीजों को और अपने जीवन में टटोल के देखिएगा। और अगर एक भी अंग हमारे पास कमती है तो वो हमारे सम्यक दर्शन पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और जैसे कि मंत्र में एक अक्षर भी कम हो तब भी वो उससे विष की वेदना दूर नहीं होती। शरीर में कोई भी एक अंग कम हो तो क्या माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता, ठीक नहीं माना जाता। मूर्ति में से थोड़ा सा भी ब्रेक हो जाए तो वो मूर्ति हम एक तरफ टिका देते हैं, अब वो हमारे लिए पूज नहीं रही। बताइएगा, कल तक जिसको पूजते थे उसमें से एक भी अंग अगर थोड़ा सा भी ब्रेक हो जाए कहीं पर तो हम टिका देते हैं एक तरफ कि ये हमारे भगवान नहीं है। और ऐसे ही हमारे जीवन में अगर सम्यक दर्शन नहीं है, अगर एक अंग भी हमारा भंग हो गया है तो क्या होगा, हमको भी एक तरफ टिक जाना पड़ेगा कि अभी तो बहुत देर लगेगी संसार में। ऐसे ये आठ अंग हैं, इनको अपने जीवन में प्रकट होते देखिएगा। जैसे ही दृष्टि निर्मल होगी वैसे ही प्रकट होंगे, आपको अलग से प्रकट करने के लिए कोशिश नहीं करनी। आपको तो सिर्फ ये करनी है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हम विनम्र होते जाएं, झुकते चले जाएं, हमारी मूर्ताएं हटती जाएं। आज अपन एक चीज और थोड़ा सा विचार करेंगे। श्रद्धा तीन तरह की होती है, एक तामसिक श्रद्धा होती। मैं एकदम जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है एकदम फास्ट तो नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारी चीज रहती है और थोड़ा सा समय, और मन तो ये करता है कि आपको जो जो मुझे मालूम है सब आपके डाल दूं, फिर आप उसका उपयोग करते रहिएगा। कभी जीवन के अंत में भी अगर आपको ख्याल आ जाए कि कोई आया था और ऐसी ऐसी बात करता था, कल्याण वल्याण की बात करता था, और अगर ख्याल आ जाए तो मेरा तो काम हो जाएगा। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, सारी चीजें रख लीजिए कहीं सुगठित करके, कभी काम आए तो उपयोग कर लीजिए। मेरी भी नहीं है, हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत करुणा करके हम तक ये चीजें दी हैं, हमें उनका उपकार मानना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था श्रद्धा तीन प्रकार की होती, एक तामसिक श्रद्धा होती, हम अपनी श्रद्धा को परखें, एक राजसिक श्रद्धा होती है, एक सात्विक श्रद्धा होती है। राजसिक श्रद्धा कैसी होती, सब भगवान करते हैं, हमारी तो भगवान पर बहुत श्रद्धा है, हमें कुछ नहीं करना, जो उनने देखा होगा वही करेंगे, वही जाए। ये आलसी लोगों की श्रद्धा है जिनको कुछ करना धरना नहीं है। देखना आप, हमें कुछ नहीं करना, हमने तो भगवान के ऊपर श्रद्धा करी है, सच्चे देवगुरु शास्त्र में हमारी श्रद्धा है, वे जो कछु कर हैं वही हुई है, उनने जो देखा होगा वही होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्या होगा, हमें कुछ करना ही नहीं। संसार के सब प्रपंच करने, लेकिन एक जो प्रपंच नहीं करने, मोक्ष मार्ग का कुछ नहीं करना, वो तो हमने जैसा देखा होगा वैसा हमारा होएगा। हमारे जीवन में चारे कराना होगा सो आ जाएगा, श्रद्धा हानि होगी सो आएगा, समय पे आती है, अपने मन से होती क्या, अपन तो सो आराम से, दुकान चलाओ जी में सार है। ऐसा मन में विचार आ सकता है, आता है कई बार, कि हमको क्या करना, जो करेगा भगवान, भगवान के बिना तो पत्ता नहीं मिल सकता, वो ही करता है अलमाइटी, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये बड़े से बड़ा अज्ञान है। ये हम पहले कह चुके हैं कि अपने उत्थान पतन के लिए हम जिम्मेदार हैं, भगवान हमारे उत्थान पतन को जानते होंगे, उनके जानने से हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं, हम जैसे भाव करेंगे वैसा बनेगा बिगड़ेगा, वे तो अकेले जानते देखते हैं, ज्ञाता दृष्टा है, सकल गे ज्ञाय तदपि, और वो भी व्यवहार से जानते देखते हैं हमारे बारे में, वैसे तो सकल गे ज्ञाय तदपि निजानंद रस लीन, इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारा हिसाब किताब मिलाते रहेंगे, वो अपने आत्मा में लीन है, वो तो व्यवहार से सबके जानने देखने वाले, सकल गे ज्ञाय तदपि, सबको जानते हैं व्यवहार से जानते हैं सब बातें, लेकिन निश्चय से तो वे आत्मज्ञ हैं, वे अपनी आत्मा को जानते हैं। लेकिन हम ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं कि वे तो सब जानते हैं, वे हमारा कल्याण कर देंगे। भैया नहीं, मुझ कारज के कारण सुआप, आप तो मेरे भीतर जो उपादान में कार्य होगा उसमें निमित्त मैं बनाऊंगा तो बनोगे, अपने मन से आकर के हमें नहीं कुछ करने वाले आप, ये विश्वास सच्चा है। और ऐसी सच्चा तो श्रद्धा तो तामसिक श्रद्धा है, आलसी लोगों की श्रद्धा होती कि हमें कुछ नहीं करना, वो तो जो भगवान करें वही होएगा, जो उनने देखा है वही हो, उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये राजसिक ये तामसिक श्रद्धा कहलाती। एक व्यक्ति था, वो सुबह से रोड के किनारे बैठा रहता था, उससे कहें लोग कि चलो, कहना चलना तो है और बहुत लंबा चौड़ा चलना है, लेकिन सूरज निकले आए तब चलेंगे। कहले भैया तो आंख बंद करें काय बैठे, कि आंख जब खोलें जब सूरज निकल आए। अब भैया जी आंख तब खोलेंगे जब सूरज निकलेगा, और जब सूरज निकलेगा तब ये चलेंगे, तो अब इनको पता कैसे लगेगा? जब तक आंख नहीं खोलेंगे तो पता कैसे लगेगा कि सूरज निकला कि नहीं? ऐसे ही हमारे साथ है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो आंख तब खोलेंगे जब सूरज निकलेगा, और जब सूरज निकलेगा तब जो है हम चलना शुरू करेंगे। नहीं, इतना प्रयास तो हमें करना पड़ेगा, हमें आंख खोल के तो बैठना पड़ेगा, हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में तो बैठना ही पड़ेगा, कषाय मंद करनी पड़ेगी, तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा वश नहीं है, होना होगा, सम्यक दर्शन तो होगा, कर्मों का छय छय उपसम भीतर में होगा तो श्रद्धा प्रकट हो जाएगी, नहीं तो हमने तो अपना काम कर लिया। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा, मंद कषाय और तत्व का अभ्यास हम निरंतर करते हैं, इतना तो हमें करना ही चाहिए, इसमें आलस नहीं करनी चाहिए, इतना तो हमारा कर्तव्य बनता है। इसके बाद होना नहीं होना वो हमारे हाथ की चीज नहीं है, वो कर्मों का शय स्वरूप सम उस पर निर्भर करता है, हमारे परिणामों पर निर्भर करता है। और राजसिक श्रद्धा होती है कि क्या करें, हम तो कुछ करना नहीं चाहते लेकिन भगवान ही हमें प्रेरणा देते हैं कि करो, सो हम तो सब करते रहते हैं, वे करने करने नहीं लगे। से मुक्त नहीं है वो, कर्ता बने का बोध लेकर के जीने वाली भी श्रद्धा है एक, जिसमें हम भगवान के प्रति तो श्रद्धा रखते हैं लेकिन सब हम सब कर्ता भोक्ता और स्वामी हैं ऐसा मान करके श्रद्धा रखते हैं। कहते ये श्रद्धा भी अभी राजसिक श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा तो वो है कि जिसमें मैं सिर्फ निमित्त मात्र भाव सव्य साची, मैं तो इस जगत में जो कुछ भी होता है उसमें निमित्त मात्र हूँ, और मैं ना कर्ता धर्ता ना स्वामी हूँ ना भोगता हूँ। इस तरह के जो विचार के साथ जो हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा होती है वो सात्विक श्रद्धा है। सारी चर्चा ऐसी ही श्रद्धा की है कि भगवान पर श्रद्धा करने के बाद ने कुछ करने की और करने की दोनों की चीज से हमें बचना चाहिए। निमित्त है, मैं तो निमित्त बनता हूं, यहां पर जो भी चीजें वस्तु का परिणमन होता है मैं उस वस्तु के परिणमन का ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा कम से कम विश्वास तो होना चाहिए, ऐसी कम से कम श्रद्धा तो होनी चाहिए। ये बात जुदी है कि फिर हम विचार और करेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हम व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे कि भैया घर भी हम ही ने बनाया है, उसके भी कर्ता हम ही हैं, फिर हम थोड़ा सा विचार करते कि घर के कर्ता हम होते तो फिर हमेशा होना चाहिए थे, नहीं थोड़ी देर के लिए तात्कालिक मान लिया हमने, व्यवहार से मान लिया तो फिर हम अपने शरीर इत्यादि कर्मों के कर्ता, कहते द्रव्य कर्मों के भी कर्ता नहीं, हम तो अपने भाव कर्मों के कर्ता हैं, अपने राग द्वेष के कर्ता हैं, वो भी अशुद्ध निश्चय न ऐसे हैं, शुद्ध निश्चय न ऐसे देखें तो अपने अपने शुद्ध भावों के कर्ता ज्ञात भोक्ता हैं। बस इतना ही तो हिसाब किताब है, और कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? लेकिन हम इतनी दृष्टि की निर्मलता नहीं रख पाते हैं, या तो नहीं करने के प्रपंच में पड़ जाते हैं या करने के कर्तापने के प्रपंच में पड़ जाते हैं, दोनों ठीक नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ पर जो होता है उसके ज्ञाता दृष्टा ही हो सकते हैं, उससे कर्ता और भोक्तापने को हटा करके हमें अपनी श्रद्धा मजबूत करनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा अपन ने इतने दिनों से लगातार श्रद्धा के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा में कभी कभी सुपरस्टिशंस आ जाते हैं, कभी कभी श्रद्धा में अंधविश्वास भी घुस जाते हैं। तब आचार्य महाराजों को लिखना पड़ा कि वो सारी लौकिक क्रियाएं जिनसे कि सम्यक दर्शन नष्ट ना हो और व्रतों में दूसर न लगे, वे ही क्रियाएं लौकिक क्रियाएं करना, बाकी क्रियाएं नहीं करना, वरना तुम्हारा सम्यक दर्शन दूषित हो जाएगा, श्रद्धा में दूषण आएगा और एक दिन श्रद्धा भंग हो जाएगी। आज अपन वही चीज पढ़ते हैं कि सुपरस्टिशंस कितने हो सकते हैं, कितने तरह की मूर्ताएं हो सकती, कितने अविवेकपूर्ण हमारे व्यवहार हो सकते हैं, उन व्यवहार को भी हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जैसा विचार होता है वैसा ही व्यवहार होता है। व्यवहार तो छाया है विचारों की, हमारे विचार ही अगर हमारा एटीट्यूड, मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि अगर हमारा एटीट्यूड ठीक हो गया, हमारा दृष्टिकोण ठीक है, हम जो कुछ भी करेंगे वो सब ठीक है, और हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं है, आप अच्छे से अच्छा करिएगा, वो सब व्यर्थ ही कहलाएगा। दृष्टिकोण बहुत कीमती चीज है, हमारे विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए, अविवेक नहीं होना चाहिए। कितने तरह का अविवेक हो सकता? तीन तरह का अपन सब जानते हैं, लोक मूर्ता, जो लोक में प्रचलित मान्यताएं हैं उनके बारे में भी हमारा अविवेक है, देव के बारे में मूर्ता हो सकती है, गुरु के बारे में मूर्ता हो सकती है। तीनों मूर्ताओं को अपन समझने की कोशिश करेंगे क्रम क्रम से। पहले नंबर आचार्य महाराज लोक मूर्ता के बारे में कह रहे हैं उसको अपन पढ़ें। 22 नंबर का श्लोक है।
आपका सागर स्नान मुच्यः सिकुताश्मनाम।
किताब नहीं है? किताब तो होगी आपके पास, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। कठिन नहीं है संस्कृत, ऐसी चीज नहीं है कि एकदम पढ़ते ही ना बने।
आपका सागर स्नान मुच्यः सिकुताश्मनाम। गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते।
लिखने वाले आचार्य भगवान हम पर कृपा करके लिख के चले गए, और हमारी स्थिति देखो कि उनकी लिखी हुई को आज बाँच भी नहीं पाते, रोज एक श्लोक भी नहीं पढ़ पाते। कैसा हमारा अपना जीवन है, भगवान की वाणी का अपने मुंह से दुनिया की चीजों का उच्चारण होता है, दुनिया की चीजें सुनते हैं, भगवान की वाणी का न उच्चारण करने का मन होता न सुनने का मन होता। बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। अपन सबका ये पुण्य है कि अपन बैठे हैं और भगवान की वाणी को सुनने का, उसको कहने का, बोलने का अपना सौभाग्य है। बीज राख फल भोग, वे कल हम लोग शाम को पढ़ रहे थे कि वाकई हम लोग को इतनी समझ तो है कि आगे के लिए कुछ हम इकट्ठा करके रख रहे हैं। पुराना तो भोग ही रहे हैं, पर आगे के लिए भी अच्छा है, इकट्ठा करके रख लीजिए। ये सामूहिक पुण्य है, कभी ये सामूहिक रूप से ही ऐसे ही हमने कभी धर्म ध्यान किया होगा, जब हमने आचार्य श्री के संघ में तीन पीछी देखी थी और एक स्थिति हमारी देखते देखते ये आई कि एक साथ 23 दीक्षाएं हुई और 23 हम लोग पहले के थे, 46 पीछी एक साथ हो गई। कैसा लगता है, सब एक साथ बैठे हैं, सबके प्रति प्रेम है, वात्सल्य है, और कौन कहाँ से आया है, आचार्य महाराज कहाँ दक्षिण से। मैंने आचार्य श्री से पूछ लिया था कि आखिर ऐसा क्या है, कुछ बताइएगा, हमको समझ में नहीं आता कि हम सबके बीच इतनी आत्मीयता है, हम सब एक दूसरे से धर्म ध्यान में लगे और आप कहाँ के, हम कहाँ कहाँ से आए। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि पूर्व जीवन में हम सब ने बैठ कर धर्म ध्यान किया होगा, उसका परिणाम है कि एक साथ फिर इकट्ठे हो गए हैं और सब मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ऐसा ही शायद अपन ने कोई सामूहिक धर्म ध्यान किया होगा, उसका परिणाम है। मैं तो हमेशा सोचता हूं आज के समय में जबकि इतनी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसके बाद भी व्यक्ति समय निकाल करके धर्म ध्यान करता है, अद्भुत है। ये मोक्ष मार्ग सच्चा है, ये हमेशा पंचम काल के अंत तक चलेगा, ये हमें गौरव है इस बात का। अगर सच्चा नहीं होता तो कोई क्यों मानता, क्यों व्यक्ति जो है अपना प्रपंच से बच करके और दो बातें धर्म की सुनने की चेष्टा करता। तो ये सच्चा मोक्ष मार्ग है, बहुत दुर्लभता से मिला अपन को, ये विचार करके और अपने कल्याण की चिंता हमेशा करनी। अपन पढ़ रहे हैं कि कैसे अंधविश्वास हमारे जीवन में आ सकते हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। छोटी छोटी चीजें भी हमारी श्रद्धा को तोड़ सकती हैं, कितनी मुश्किल से श्रद्धा हुई है और ये चीजें तोड़ ना दें। क्या कहते हैं महाराज हमें समझाते हुए कि आपका सागर स्नान, नदी में नहाने से धर्म होता है, ऐसी भूल में नहीं रहना। समुद्र में नहा लेने से मोक्ष हो जाता है, ऐसी भूल मत कर बैठना। नदी में नहाने से तो शरीर पवित्र होता है, आत्मा तो वीतरागता की नदी में नहाने से पवित्र होती है, इस नदी में नहाने से पवित्र नहीं होती। इतना ही तो बता रहे हैं, कहीं ऐसा भ्रम ना हो जाए कि नदी में नहाने से भी धर्म होता है। समझाते हुए कहते कि धर्म समझ करके नदी और समुद्र में स्नान मत करना। और सिकताश्मनाम, किसी व्यक्ति ने बहुत सारी बालू का ढेर लगा था, लोगों को आने जाने में बाधा होती थी, फैली थी, सो उसने इकट्ठी करके ढेर लगा दिया। लोगों ने देखा कि अरे वाह, ऐसा ढेर लगाने में धर्म होता है, तो कल से लोगों ने बालू का ढेर लगाना शुरू कर दिया। बहुत सारे रास्ते में पत्थर पड़े थे, किसी ने कहा कि लगते हैं लोगों को, सब इकट्ठे करके एक जगह इकट्ठे करके ढेर लगा दिया। लोगों ने सोचा कि ये ढेर लगाने में धर्म होता है। तो कहती सिक्ताश्मनाम, बालू का ढेर लगाने से या कि पत्थरों का ढेर लगाने से धर्म नहीं होता है, कि नदी के किनारे हम तो उदयगिरी खंडगिरी गए थे, सो वहां पर ऐसी मान्यता थी कि नदी बहती थी उसको किनारे पत्थर पड़े थे, सो एक छोटे पत्थर पे बड़ो पत्थर रखो, उस पे और बड़ो रखो, जितने रख सको अगर सात रख ले तो सातवो स्वर्ग मिले, ऐसी मान्यता थी। रखते थे छोटे पत्थर पर बड़ा, बड़ी मुश्किल से जमता था वो, जमाते थे कि देखो अपन को कौन सा स्वर्ग मिलता है, जितने जमा लेंगे उतना मिलेगा। ऐसी भ्रमनाएं हमारे जीवन में आ सकती, ऐसी लोक मूर्ता हमारे जीवन में, क्योंकि सुन सुन करके और कई चमत्कार देख करके अपना मन भी जो है भ्रमित हो जाता। थोड़ा सा कहीं चमत्कार दिखा अपन ने कभी, क्योंकि भगवान का अतिशय देखा नहीं, साक्षात भगवान अपन ने देखे होते और उनका जो जो अतिशय होते हैं 34 अतिशय होते हैं, बेदेखे होते तो ये सब चमत्कार अमत्कार कुछ अपन को भ्रमित नहीं करते, लेकिन आज तो वही चमत्कार है, यंत्रों के द्वारा किए जाने वाले चमत्कारों से भ्रमित हो जाते हैं और जो चित चमत्कार है उस चित चमत्कार को भूल जाते हैं। अरे जिसने अपने पांचों इंद्रियों और मन को जीत लिया, इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता क्या दुनिया में? ये बड़ा चमत्कार है, लेकिन बाकी चमत्कारों में हमें आनंद आने लगता है। थोड़ी मोड़ी कहीं कोई चीज उपलब्ध हो जाती है तो उसमें हम जल्दी ढुलक जाते, तो कहते नहीं इनसे बच के रहना, और पर्वत से गिरने को कई लोग धर्म मानते होंगे, तुम ऐसे भ्रम में नहीं रहना, पर्वत से गिरने पर तो संक्लेश परिणामों से मरण हो करके देव दुर्गति होगी, तुम्हें मोक्षोक्ष नहीं होने। और फिर उसमें लिखा अग्नि में पड़ जाना, अग्नि में जल जाएंगे। पहले प्रथा चलती थी ना कि जीवन साथी के साथ में अग्नि में ही जल जाओ, उसी से मोक्ष हो जाए। तो उसके पीछे तो ये था कि समय अच्छा नहीं था कि भैया जब तक हमारा रक्षक करने वाला है, जिसके साथ विवाह किया, जब तक वो है समय रक्षा करेगा, अब वो ही नहीं रहा तो अपना जीवन ही समाप्त है। अब तो वो जीवन समाप्त है, इस तरह की प्रक्रिया थी, क्योंकि कोई उनकी रक्षा का वो नहीं था, इस वजह से अब जो है उसी को धर्म मान लिया। ऐसी लोक मूर्ताएं सैकड़ों तरह की हो सकती हैं, इन लोक मूर्ताओं में फंस करके हम अपने सच्ची श्रद्धा को, सम्यक दर्शन को कहीं खो ना दें, ये बात आचार्य महाराज हमें समझा रहे। और भी बहुत सारी लोक मूर्ताएं हो सकती, लेकिन एक चीज और है कि बहुत अधिक भी जो है लोक व्यवहार को एकदम छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी कह रहा हूं आपसे। जो लोक व्यवहार हमें बस ध्यान ये रखना है कि ऐसा लोक व्यवहार श्रावक के लिए उपयोगी है जिससे उसका सम्यक दर्शन न टूटे, व्रतों में दूषण न लगे, बस इतना ध्यान रखना है। और ऐसा लोक व्यवहार जिसके जिससे हमारा सम्यक दर्शन खंडित होता है, कई लोग ऐसा प्रश्न कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जैसे कि आपके दीप है, धूप है, इन चीजों को लेकर के भी, अरे ये तो मूर्ता है, इसमें क्या रखा हुआ है, धूप जला रहे मंदिर में या कि दीप जला रहे, ये भी मूर्ता है। कहते उतर जाके हम तुम्हारे उस पर जाते गद्दी पे जाके पैर छूते हैं, कहते ये भी लोक मूर्ता है। नहीं भैया, उनके पीछे कोई ना कोई तथ्य था, उनके पीछे कोई ना कोई व्यवहार था। अब ये बात है कि अपनी खो गया है वो व्यवहार, गद्दी पे जाके पैर पड़ते सुकाई के लिए पड़ते कि भगवान लाज रखियो, इस पे बैठ रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ धर्म पूर्वक करें, इतनी शक्ति देना, न्याय नीति पूर्वक इस गद्दी से उठ करके जाएं, सो न्याय नीति पूर्वक करें, हमसे कोई पाप न करवा देना इस गद्दी पे बिठाल करके। हम आपके हाथ जोड़ रहे, हम आपके प्रति श्रद्धा रख रहे, हमें मालूम है कि ऐसा धर्म है, इस गद्दी पर हम उस धर्म का निर्वाह कर सकें, इसलिए गद्दी के पांव छू लिए, तो इसमें कोई लोक मूर्ता नहीं होगी। लेकिन उसी को धर्म मान लो तो लोक मूर्ता हो जाए, कि इसी में धर्म है। बस इतना भर ध्यान रखना है कि धर्म का स्वरूप क्या है, और ये बाकी चीजें जो लौकिक हैं उनमें कितना धर्म है, ये पर हमें ध्यान में रहना चाहिए। आज आपने मेरे पास घड़ी नहीं रखी है, फिर भी मुझे ध्यान दें। तो ऐसी चीजों का अपने को ध्यान रखना है। बहुत सारे व्यवहार, लोक व्यवहार करना पड़ते हैं व्यक्ति को, बहुत मुश्किल पड़ती है कई बार। अब जिस चाहे को प्रणाम भी करना पड़ता तो भगवान मान के थोड़ी करते हैं। अब आपके यहां चलता कि नहीं चलता, दामाद आए मान लो तो क्या करते हैं, नरियल देते उनके लिए, टीका लगाते और पैसा देते, नरियल देते तो क्या कहते, मोक्ष पर प्राप्त है फलम निरपामती स्वाहा कहते नहीं, लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार में तो हम उनको नरियल भी दे देंगे, लेकिन हम उसको धर्म नहीं मानेंगे। अब इसका भी अगर कोई निषेध कहे कह रही ऐसा नरियल दे रहे जो भगवान को चलाते, वो नरियल आप इनको दे रहे, तो इसमें इसमें हमें विचार करना चाहिए कि हम किस चीज को कैसा मानते हैं, हमारी दृष्टि कितनी निर्मल है, हमारी दृष्टि में अविवेक तो नहीं है। सारी क्रियाएं जो विवेकपूर्ण हैं वे ही श्रावक के लिए योग्य हैं। लोक व्यवहार में जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब में हम ध्यान रखें, उनमें धर्म नहीं है, वे तो लौकिक हैं, तो लौकिक ही है, तो लौकिक को लौकिक की तरह से ही करें, उनको धर्म नहीं माने। इतनी ही बात यहाँ पर आचार्य महाराज कहते। और बहुत सारी लोक मूर्ताएं हैं, मैं और डिटेल में आपसे क्या कहूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें हैं जो कि व्यक्ति को अच्छी लगती हों, आपका कॉन्शियस क्या अलाउ करता है, तो मेरा मन नहीं करता है कि आप, हाँ मेरे से आप पूछेंगे तब फिर मेरा फर्ज होता कि मैं आपको बताऊं, लेकिन जनरल उसमें तो सब जबकि बैठे हैं, आप स्वयं अपने विवेक से अपना विवेक रखें कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं, किस में धर्म है, किस में धर्म नहीं है, इतना ध्यान रखें। और आगे कहते कि देवता को लेकर के भी मूर्ता हो सकती है। देवता दो प्रकार के होते, एक तो वीतरागी देव होते, एक रागी द्वेषी देव होते। उनका संसार अभी गया नहीं है, वे सेलेस्टियल बीइंग्स कहलाते, स्वर्ग के देव हैं, या कि ज्योतिषी देव हैं, भवनवासी हैं, वेंतर हैं, या वैमानिक देव, ये भी देव कहलाते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि उन देवी देवताओं को भी हम वीतरागी मान करके और वैसा ही आदर सत्कार करने लगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारी वीतरागता के प्रति जो रुचि है वो कम हो जाएगी, और रुचि कम होना अपने आत्मा की शुद्ध बुद्ध भूल जाना। अपन ने यही तो पढ़ा था शुरुआत में कि पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, ये जो अपने आप में रुचि ना होकर के दूसरी सब राग द्वेष में रुचि होने लगी है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी आत्मा में से रुचि खत्म हो जाएगी। इसलिए सावधानी, देव मूर्ता। और अपन देखते हैं क्या कहते हैं, वरोपलिप्स या सावान राग द्वेष मलीमसा देवताय दुपासीत देवता मूढमुच्यते। वरोपलिप्स आसावान, वर कहलाता है जो हमारी इच्छा हुए वो, उसको कहते वर। इसमें अच्छी परिभाषा लिखी है कि जो हमारी इच्छा होवे उसको कहते वर। वरोपलिप्स, उस वर को पाने की, अपनी इच्छित वस्तु को पाने की जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा से और आशा से युक्त होकर के कि मिल जाएगी। एक तो पहले इच्छा जागृत हुई और फिर ये आशा बंधी कि उसकी पूर्ति हो जाएगी, ऐसी भावना से वरोपलिप्स आशावान किसके पास चले गए, राग द्वेष मली मशा, जो अभी राग द्वेष से स्वयं मलिन हैं, उनके पास जाकर, ऐसे देवताओं के पास जाकर के उनकी आराधना करने लगे। अपने स्वार्थ बस किसी इच्छित वस्तु की कामना के साथ अगर हम रागी द्वेषी देवता के पास जाते हैं तो कई बार इसमें थोड़ा सा अपन लोग गड़बड़ी कर जाते हैं। कई बार ऐसा भी सुनने में, कहने में आने लगता है कि अपने वीतरागी भगवान से भी कछु इच्छा करो तो बाबी देव मूर्ता है। हाँ भैया, ऐसी नहीं है बात, इसमें ऐसी नहीं लिखी। हम तो रोज मांगते, नहीं तो हम तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम तो रोज भगवान से हाथ जोड़ते कि दुख कहो, कम्मक कहो, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाही मंडम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, हम तो इतनी रोज मांगते। अब इस मांगने को अगर आप हमारी देव मूर्ता कहोगे तो बहुत मुश्किल होगी। तो देव मूर्ता का बहुत आसान सा अर्थ इसमें लिख दिया समंत भद्र स्वामी ने कि किसी इच्छित वस्तु की, सांसारिक लौकिक वस्तु की आकांक्षा से किसके पास जा रहे, किसको देवता मान रहे, राग द्वेष मली मसा, जो राग द्वेष से मलिन है उनको देवता मान करके और उनकी आराधना अगर करना शुरू करते हैं तो देव मूर्ता कहलाएगी। देव मूर्ता मतलब देवई का विवेक नहीं आपके लिए कि कौन सच्चा देव है, कौन सच्चा देव नहीं है। वीतरागी सो सच्चा हमाए और पराए, नहीं कि हम आप सब अपने भगवान को अच्छो के, सब अपने भगवान को सच्चो के, उससे मतलब नहीं है। हमारा तो मुख्य उद्देश्य यह है कि ने हमारे ने तुम्हारे, जो वीतरागी है सो हमारे भगवान है, वो हमारे देवता है, हमारी कसौटी वीतरागता है। अगर एक धागा भी उस पर डाल दोगे तो हम अकलंक की तरह उसको लांग करके भी जा सकते। महावीर स्वामी का अगर तुम बचपन का फोटो ले और आज मुकुट लगाए तो हम उनको भी जय जिनेन्द्र कह सकत, नमोस्तु नहीं कह सकते। राग द्वेष मली मसा, अगर राग द्वेष से थोड़े से भी युक्त हैं तब हमारा उनके प्रति जो आराधना का भाव है जो श्रद्धा का भाव है वो जागृत ही नहीं होगा। जो मोक्ष मार्ग में जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, 18 दोषों से रहित हैं, वही हमारे देव हैं। जो राग द्वेष से मलिन हैं, वे हमारे देवता नहीं हैं। ये हमारे भीतर एकदम विजन क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी लोगों को मिथ्या धारणाएं हैं कि हम जिस चाहे को देखते भी रहते हैं, सामने सामने देख रहे हैं कि राग द्वेष से युक्त हैं, फिर भी हम उनको देव मान करके, वो थोड़े से अपने स्वार्थ की वजह से और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा स्वार्थ सज जाता, संसार सज जाता। मैं भी जानता हूं इस चीज को भैया कि जब जिस पे विपत्ति आती है उसको कुछ नहीं सूझता, उसको तो यही रखता है कि विपत्ति दूर हो जाए, चाहे जैसे हो गए, जो उनको जो माथा टेकने पड़े सो टेक ले, हम सब करें ले, जानते हैं। लेकिन भीतर की श्रद्धा की बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हमें भले ही डॉक्टर के पास जाकर के अपने बेटे को दिखाते समय और कहना पड़े कि आप ही हमारे भगवान हो, आप तो ठीक कर दो, लेकिन भी भगवान नहीं हो गए हमारे कैसे, भगवान तो हमारे राग द्वेष से रहते ही हैं, ये भगवान नहीं है। हमारे मुंह से भले ही निकल गया है कि ये भगवान आप ही भगवान हो, लेकिन हम अपने भीतर ऐसी श्रद्धा मजबूत रखेंगे कि हमारे भगवान तो वीतरागी होते हैं। जो राग द्वेष युक्त हैं उनका तो अभी संसार ही नहीं गया है, उनको हम कैसे देवता मान सकते हैं। ऐसे देव मूर्ता और लोक मूर्ता से रहित होकर के और हम अपने श्रद्धा को मजबूत बनाएं। एक और गुरु मूर्ता है, वो फिर कल पढ़ेंगे आप। वो भी ऐसा ही है कि देव गुरु के बारे में, जो कि मोक्ष मार्ग की तरफ जाते हों, जिनके कदम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हों, वही हमारे गुरु हैं। अपन ने जो गुरु की परिभाषा बनाई है उसके मुताबिक अगर होगा तो है। और एक चीज हमने पहले भी कही थी कि ज्यादा भी कसौटी पे नहीं कसना भैया, ज्यादा कसौटी पे कसने से चीजें ही हाथ से चली जावे तो ऐसा भी ठीक नहीं है। इसलिए जितनी कसौटी भगवान ने दी, क्योंकि अपन कौन होते हैं कसौटी पर कसने वाले, अपने पास क्या, जो उनने दी उसी पे वही हमसे कहते कि हमारी खोपड़ा रख लियो। देखो आप, ऐसा कोई कह सकता है? यह सिर्फ वीतराग धर्म की विशेषता है कि जहां भगवान खुद अपना स्वरूप बताते हैं कि भगवान का स्वरूप तो ये है, और ऐसे न होवे तो हम भी न होवे तो न मानियो। और समंत भद्र स्वामी तो जाकर के सीधे खड़े हो जाते समो शरण में कि ये सब देवागमन भोजान चामरादि भूतिया। अच्छा जी, आपके पास देवता आ रहे हैं, छत्र चमर डोल रहे हैं, इतना बड़ा बढ़िया समो शरण लगा है, सो जाने समझियो कि ये वजह से आए हम, ये तो इंद्रजालिया भी कर लेते हैं, ऐसा भगवान को लाना दे रहे सामने खड़े खड़े। तो भगवान धीरे से कहते तो आए कायक हो जा बता, कहते वहते नहीं, अपने मन की बात है। तो भगवान पूछ लेते हैं समंत भद्र स्वामी से, अच्छा बताओ तो फिर हमें क्यों प्रणाम करते आकर के। कहते दोषा वरण योर हानर, जितने 18 दोष संसारी जीवों को हो सकते हैं वे सब आपके नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए, आपको प्रणाम कर रहे हैं, हमने आपको इस कसौटी पे परख लिया इसलिए प्रणाम। ये इसके बारे में है कि लोक में प्रचलित जो चीजें हैं उनमें कितना धर्म है या नहीं है, इसको हम परख लें। देव जिसके सामने हम अपना माथा टेक रहे हैं उसको परख लें कि जो देवता की कसौटी है उस पर ठीक बैठते हैं। वीतरागी हैं सो देव हैं, वीतरागी हैं सो धर्म हैं, वीतरागी है सो हमारे गुरु हैं। अगर वीतरागता नहीं है तो हम उनके प्रति उतना ही व्यवहार करेंगे, जय जिनेन्द्र वाला व्यवहार करेंगे, नमोस्तु वाला व्यवहार तो नहीं कर सकते हैं। जो राग द्वेष युक्त है उसके प्रति हमारा व्यवहार जैसे सांसारिक जीवों के प्रति जय जिनेन्द्र का होता है वैसा ही व्यवहार करेंगे, उसको हम वैसा रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वैसा आदर नहीं देंगे ये, और रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे हम, उसकी निंदा भी नहीं करेंगे। जो जिसके योग्य है वैसा आचरण करेंगे, विवेक पूर्वक आचरण करेंगे, तभी हमारी जो श्रद्धा हमें मिली है वो मजबूत होगी और बनी रहेगी। हम सबको ऐसी सच्ची श्रद्धा मिले, हमारी दृष्टि निर्मल हो और हम उस दृष्टि की निर्मलता से अपना कल्याण करें, ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुर विद्यासागर मुनि।
अब गुरु वंदना और
निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो तारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां दिन रात लुटाया करते वो शम शम की अविनश्वर मणियां शांति त्याग के मूर्तिमान शिवपत पंथी गुरुवर प्रणाम भानु शिव कानी है सबो द्रव्य जानवे अंध विद भानवे को सौ पर पहचानवे परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को भवन सताए वे को भव्य